हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 17-18। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले हृदय से समस्त भौतिक आसक्ति और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके गुरु और कृष्ण से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करिए, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाखय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधारुण बिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णातरं किमपि तत्व अहम् न जानि। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति ये स्तवे वेदे साङ्गपत् क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरा यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशस्तिकम्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीयद्वैतकथाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद चौथा अध्याय श्लोक नंबर 17 और 18। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अशुद्धधानां निःसत्त्वात् दुर्मेधान् हिषितायुषः दुर्भाग्यां च जनान्वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् दद्यौहितममोकदृक्। भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अशुद्धधानान् निःसत्त्वान् दुर्मेधान् हिषितायुष दुर्भागान् च जनान्वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणा यत् दद्यौहित ममोगदेक। भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अशुद्धधानान् निःसत्त्वान् दुर्मेधान् हृषितायुष दुर्भागान् च जनान्वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् दद्यौहितममोगदृक्। भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अशुद्धधानान् निःसत्त्वान् दुर्मेधान् हृषितायुष दुर्भागान् च जनान्वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् दद्यौहितममोगदृक्। भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अशुद्धधानान् निःसत्त्वान् दुर्मेधान् हृषितायुष दुर्भागान् च जनान्वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् दद्यौहितममोगदृक्। भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अशुद्धधानान् निःसत्त्वान् दुर्मेधान् हृषितायुष दुर्भाग्यां च जनान्वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् दद्यौहितममोगदृक्। भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अशुद्धधानां निःसत्त्वान् दुर्मेधान् हृषितायुष दुर्भागां च जनान्वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् दद्योहितममोगरे। शब्दों का अर्थ, भौतिकानां च भावानां, भौतिकानां अर्थात पदार्थ से निर्मित प्रत्येक वस्तु का च मन भी, भावानां अर्थात कर्म, शक्ति ह्रासं च तत्कृतं। शक्ति ह्रासं का मतलब होता है प्रकृति प्राकृतिक शक्ति का क्षय हो जाना, तत्कृतं उसके द्वारा किया गया। अश्रद्धान अर्थात श्रद्धा विहीन का, निसत्वान अर्थात सत्वगुण के अभाव के कारण अधीर, दुर्मेधान अर्थात दुर्बुद्धि वाला, हिसित घटा हुआ, आयुष्य अर्थात जीवन की अवधि का, दुर्भागान च जनान वीक्ष, दुर्भागान अर्थात अभागे, जनान यानी जन सामान्य को वीक्ष्य देखकर, मुनिर दिव्येन चक्षुषा, मुनिर अर्थात मुनि, दिव्येन अर्थात दिव्य, चक्षुषा अर्थात दृष्टि से, सर्ववर्णाश्रमाणाम यत्, सर्ववर्णाश्रमाम यानी जीवन के समस्त स्तरों तथा आश्रमों का, यत जो, दद्यो हितममो गद्रिक, दद्यो मतलब विचार किया, हितम अर्थात कल्याण के लिए, अमोगद्रिक ज्ञान से युक्त। अनुवाद, परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से काल के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनीति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सत्वगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। काल की अलक्षित शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृत के भाग गर्भ में डाल देती हैं। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं का क्षय हो जाता है। इस युग में लोगों की आयु काफी घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी, पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिणाम में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गायें भी पूर्व युगों की भांति दूध नहीं देती। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं के कारण आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। महर्षि वेद व्यास अपनी दिव्य दृष्टि से इस को देख सके। जिस प्रकार एक ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले लोग सारी मानवता के भविष्य को पहले से ही बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक तायनी दृष्टि से यह सब देख सकते हैं और ऐसे सारे योगी जो स्वभावतः भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। वे जनता के वास्तविक मित्र हैं। तथाकथित जननेता नहीं जो ये भी नहीं जान पाते कि अगले 5 मिनटों के बाद क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता सभी अभागी व्यक्ति हैं, जिनकी आध्यात्मिक ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती। वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं, वे नाना प्रकार के रोगों से व्याकुल रहते हैं। उदाहरणार्थ आधुनिक युग में अनेक यक्षमा के रोगी हैं और यक्षमा अस्पताल भी हैं, लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे मनुष्य उन योगियों का स्वागत करते कराते हैं जो श्रील व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्यकर्ता हैं, जो कुछ न कुछ योजना बनाते रहते हैं जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के लोगों का लाभ हो सके। सबसे बड़े परोपकारी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं, भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है कि पतित आत्माओं को भगवत धाम भेजकर उनका उद्धार करना है। श्री प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरां यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। आज सूत गोस्वामी कलयुग के प्रभावों के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि प्रश्न क्या था, उन्होंने ऋषि ने क्या प्रश्न किया था, शौनक ऋषि ने, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना। पहले है कस्मिन् युगे, जो कि श्लोक नंबर 14 में उन्होंने बताया, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर, कि ये द्वापर युग का एंड था जो उस समय त्रेता युग के बाद आया था। उसमें सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि उस युग में यानी द्वापर युग में पराशर मुनि और सत्यवती के द्वारा व्यास देव इस संसार में प्रकट हुए, वो युग बताया। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा, प्रवृत्ते स्थाने वा केन हेतुना, उसके विषय में श्लोक नंबर 15 में बताया, सकदाचित सरस्वत्याम उपस्पृश्य जलम सुचि, यानी वो जगह कौन सी थी, सरस्वती का किनारा। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि सरस्वती नदी हिमालय पर्वत से बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है, यानी कि वो जगह, वो स्थान, जिस स्थान को इंगित किया जा रहा है वो कौन सा है, बद्रिकाश्रम में साम्य प्रयास, यानी जहाँ पर वेद व्यास जी रहते हैं वो स्थान। वहां पर क्यों बताया जा रहा है, यहाँ पर क्या हुआ था, श्लोक नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा, कथाम भागवतीम पुण्य, कि जो भागवतम महापुराण की प्रेरणा क्या हुआ था, वो कौन सी जगह थी, वो कौन सा स्थान था और वो कौन सी सिचुएशन थी, कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान सौहिता मुनि, जहाँ पर कृष्ण द्वैपायन ने जिस सिचुएशन के कारण ये श्रीमद् भागवतम की रचना की उसको संकलन किया। तो पहले उन्होंने क्या बताया, युग बताया, उसके बाद स्थान बताया और आज बता रहे हैं वो सिचुएशन जिनके जिसके कारण उनको ये प्रेरणा मिली कि ना मुझे भागवतम की रचना करनी चाहिए, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। श्लोक नंबर 16 में बताया, परावरज्ञ सऋषि कालीन ना व्यक्त रहो हिस्सा, क्योंकि वो ऐसे ऋषि थे जिनको भूत भविष्य और वर्तमान के विषय में पता था, और जो संसार में जब चतुर्युग होता है तो जो नेक्स्ट युग जब आता है उसके अंदर जो प्रभाव होता है वो उसको देख रहे थे। और कलयुग का क्या प्रभाव था, कलयुग आने से क्या ऐसा हो रहा था जिसके कारण उन्होंने सोचा कि मुझे भागवतम महापुराण की रचना करनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया भौतिकानां च भावानां शक्ति ह्रासं च तत्कृतं। ये कलयुग का पहला दोष बता रहे हैं। भौतिकानां च भावानां यानी संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी भौतिक वस्तुएं, भौतिक प्रकृति जो हमें प्रदान करती है, वो सब उनका सब भावानां यानी उनकी शक्ति ह्रासं, उन सब की शक्ति समाप्त खत्म हो जाएगी, कम होती जाएगी। तत्कृतम यानी उसके द्वारा, अब वो जो भी कार्य होगा ना भौतिक प्रकृति का, अब भौतिक प्रकृति में क्या आता है, जैसे धरती, प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया कि धरती पहले जो युग होते हैं सत्युग, त्रेता और द्वापर, उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में और पौष्टिक अन्न सब्जियां इत्यादि प्रदान करती है और बहुत वो पौष्टिक होता है। ऐसे हम बोलते भी ना कि आज के ना जो अन्न होता है, जो ये सब चीजें होती हैं सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह, उनमें वो पावर नहीं है। तो भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति है ना, वो भी अपनी पूरी क्षमता के अनुसार नहीं दे पाती है, क्योंकि उसकी शक्ति जो है वो ह्रास हो जाती है। लिखा है ना शक्ति ह्रासं च तत्कृतं। आटा, दूध, चावल, गेहूं और जो भी चीजें संसार में सब्जियां हैं, वो उनमें वो इतनी पौष्टिकता नहीं है, जिसके कारण जो भी जीव है, जो मनुष्य है या पशु है, वो प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते हैं। उनको ज्यादा न्यूट्रलाइज वाला भोजन नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, उनको पर्याप्त मात्रा में शक्ति प्राप्त नहीं होती है। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं गायें भी पूर्व युगों के बाद ही दूध नहीं देती हैं। और यहाँ पर क्या है, जो गाय जो है ना, वो हमारी संस्कृति में ऐसा है कि जो गाय का दूध पीते हैं उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि वो आध्यात्मिक में उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि गाय जो है, ऐसे देखो हमारे सनातन धर्म में गाय को माता की पद्धति के, गाय का दूध पीना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारी जो बुद्धि के अंदर आध्यात्मिक उन्नति करने वाले तत्व है ना, वो पोष्टि, उसको पोष्टि मिलती है। ऐसे भक्त बताते हैं कि गाय, क्योंकि उसके शरीर में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, तो उसका दूध पीने से बुद्धि और मन सात्विक उसमें विचार आते हैं। लेकिन आज क्योंकि गायों का दूध नहीं मिलता, ऐसे तो पहले ही कलयुग के कारण उनका दूध कम हो गया, और यहाँ पर क्योंकि गौ हत्या होती है इतनी, तो उसके कारण लोगों के अंदर ऐसी बुद्धि नहीं प्राप्त हो रही उनको, जिसके कारण वो आध्यात्मिकता में उन्नति करें। ये तो भौतिक प्रभाव है ना, ये जैसे भौतिकानां च भावानां शक्ति ह्रासं च तत्कृतं, कि भौतिक की जो पदार्थ है उनकी ही शक्ति समाप्त हो रही है। और दूसरा बताया अश्रद्धान। अश्रद्धान का मतलब होता है जीवों के अंदर श्रद्धा नहीं रहती। वास्तव में श्रद्धा का मतलब होता है सत्य को ग्रहण करना, जो सत्य है, जो गुरु साधु और शास्त्र से हम श्रवण करते हैं, उसके अंदर श्रद्धा यदि नहीं होगी तो भगवान कहते हैं अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि, कि जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है वो तो चाहे कुछ भी कर ले वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। अशुद्ध दाना पुरुष धर्मस्यास, जो धर्म है उसमें यदि उसकी श्रद्धा नहीं, धर्म क्या है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा है, जो भगवान ने किया है, जो भगवान का आदेश है वही धर्म है। और यदि किसी जीव को उस धर्म के अंदर श्रद्धा नहीं है तो उसको अश्रद्धा कहते हैं। और कलयुग के तकरीबन जितने भी लोग हैं 90% लोग को धर्म के अंदर श्रद्धा नहीं, सत्य सत्य के अंदर श्रद्धा नहीं है तो उनके लिए भगवान ने कहा अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं करते। भगवान ने कहा जब तक श्रद्धा नहीं होगी ना, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम, श्रद्धा होगी तभी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और श्रद्धा कोई अगर आज के जीव कहते भी हैं कि हाँ हमारी श्रद्धा है धर्म के प्रति, हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण है, लेकिन श्रद्धा खाली कहने का विषय नहीं है, बोलने का विषय नहीं है। भगवान कहते हैं 4.39 में श्रद्धावान लभते ज्ञानम तस्मात् संयतेन्द्रियः, अगर आपके हृदय के अंदर श्रद्धा है तो आपकी श्रद्धा झलकनी चाहिए इंद्रियों के द्वारा। आप कितना अपनी इंद्रियों को संयमित कर रहे हो, कितना आप इंद्रियों के द्वारा भगवान, यदि भगवान से प्रेम करते हो, भगवान के अंदर श्रद्धा है तो कितना इंद्रियों को उसके कार्यों में लगा रहे हो। अगर इंद्रियां भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए खाली भाग रही हैं और खाली मुंह से कह दें हम श्रद्धा रखते हैं भगवान की, तो इसको श्रद्धा नहीं कहते हैं। वास्तव में श्रद्धा रख रहे हैं तो हमें आदेश का पालन करना होगा। आज जीव कहते भी हैं कि हम भगवान के अंदर श्रद्धा रखते हैं, वो कितना भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। भगवान कहते हैं सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, सदैव प्रेम से मेरे नाम का भजन करो। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयस्यते, मुझे भक्ति और प्रेम के साथ पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये सब अर्पण करो, मैं खाता हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करता हूँ। भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्याज इमाम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, सारे धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। तो जो श्रद्धा रखते हैं क्या वो इन आदेशों का फॉलो कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो श्रद्धा वाले हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो केवल ये कहना काफी नहीं है कि हम श्रद्धा रख रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, इसी कारण अशुद्ध धान निस्सत्वान, निस्सत्वान का अर्थ है के सत्व गुण का अभाव हो जाएगा। वास्तव में हर युग एक के साथ एक गुण होता है, सत्युग जो है उसमें सत्व गुण प्रधान था, दूसरे गुण में थे रजोगुण तमोगुण इत्यादि, परंतु प्रधान सत्व गुण। उसी तरह से जब दूसरा युग आता है त्रेता युग, उसमें सत्व गुण थोड़ा कम हो जाता है और दूसरे भी गुण जो है वो बढ़ जाते हैं, और उसके बाद द्वापर युग में और भी कम हो जाता है, जैसे बुद्धि में ना दूसरे गुण ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये कलयुग ऐसा है कि सत्व गुण बिल्कुल क्षय हो जाता है, जीव जो है वो सत्व गुण बहुत अभाव हो जाता है निसत्व। इसके कारण जीव सारे सत्व गुण ही कार्य नहीं करता। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं 14.11 में भगवान ने कहा सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् वृद्धं सत्त्वं सत्वमित्युत, अर्थात सत्वगुण की अव्यक्ति को तभी अनुभव किया जाता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं, यानी कि पूरे शरीर में पूरे हमारे देह में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है ना, उस समय सत्वगुण का सत्वगुण की अभिव्यक्ति की जाती है, यानी सत्वगुण को उस समय रियलाइज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है निसत्व, ये कलयुग में सत्वगुण बहुत कम हो जाता है, इसलिए ज्ञान का अभाव हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, संसार में जो जितने प्राणी हैं वो अधीर हो जाते हैं, उनका धीर समाप्त हो जाता है, हर समय विचलित रहते हैं, मतलब कुछ भी प्राप्त हो जाए उससे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, बहुत ही विचलित रहते हैं, हमेशा बेचैन रहते हैं। आगे बताया दुर्मेधान, दुर्मेधान का अर्थ है बुद्धि बहुत ही खराब हो जाती, दुर्बुद्धि वाला हो जाता है कौन, जो कलयुग का प्राणी होता है वो। वास्तव में बुद्धि जो है वो हमारे इस शरीर रूपी रथ की सारथी के बराबर है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में इंद्रियाः परायुः इंद्रियः परायस्तु सः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परस, यानी भगवान क्या कहते हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, ऐसे कैसे बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जैसे एक रथ, अगर हम इसको ऐसे समझते हैं, एक रथ होता है, उसके पांच घोड़े, ये घोड़े कौन है? ये इंद्रियां, ठीक है। और रथ की जो लगाम है वो मन के बराबर है, और इस लगाम को पकड़ने वाला जो सारथी है वो ये बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा लगाम यानी मन, और लगाम के द्वारा घोड़े यानी इंद्रियां वश में होते हैं, ठीक है। बुद्धि किसको वश में कर रही है? बुद्धि बोलती है, मन तो उल्टी सीधी काम करता रहता है, लेकिन बुद्धि अगर सही होगी तो फिर मन को वो वश में करेगी कि नहीं ये कार्य नहीं कर सकते। और मन अगर वश में होगा तो इंद्रियां कभी भी विवश नहीं हो सकती। मतलब अगर सारथी ठीक हो तो ये रथ को बहुत अच्छी जगह ले जाएगा। जैसे अगर सारथी के हाथ से लगाम छूट जाए तो घोड़े न जाने कहां निकल जाएंगे। इसी प्रकार यदि मन की लगाम बुद्धि के हाथ से छूट जाए तो ये जीवन न जाने किस नरक में जाकर पहुंचेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ना यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दुर्बुद्धि, कि कलयुग के जो जीवों की बुद्धि है दुर्मेधान, उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण बुद्धि को ठीक करने का तरीका बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान कहते हैं 10.10 में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम। अगर बुद्धि को ठीक करना है तो क्या करो, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं, सदैव प्रेम से मेरा भजन करो, प्रीति पूर्वकम मेरे से आप मेरा भजन करोगे तो क्या होगा, फिर ददामि बुद्धि, फिर मैं आपकी बुद्धि को योग प्रदान करूंगा, यानी बुद्धि को प्योरिटी प्रदान करूंगा जिससे तुम्हारी बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जीव कलयुग के भगवान का भजन नहीं करते, इसलिए उनकी बुद्धि समाप्त हो जाती है, बुद्धि बहुत ही खराब हो जाती है, जिसके कारण मन भी विचलित रहता है और इंद्रियां कभी काबू में नहीं रहती। आगे कहते हैं हृषित आयुष्य, आयुष्य कहते हैं जीवन अवधि। जैसे जैसे अपराध बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन अवधि भी कम होती जाती है। वास्तव में काल क्रम है, क्योंकि जीव जितने ज्यादा समय जिएगा उतने ही ज्यादा अपराध करेगा। क्योंकि क्यों अपराध कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बताया कि अशुद्ध धन, उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, निस्सत्वान सत्वगुण का अभाव है, बुद्धि भी नहीं है, तो ऐसा जानवर क्या करेगा, वो तो जानवरों की तरह जिएगा ना। उसके पास अभी मनुष्य की तरह जीने के लिए उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, उसके अंदर सत्वगुण होना चाहिए, उसके अंदर बुद्धि, ये तीनों चीजें तो सत्वगुण, ये बुद्धि और श्रद्धा, ये तो कलयुग के आने से ही उसकी हिरास हो रही है, समाप्त हो रही है। तो उसके कारण क्या, उसकी आयु समाप्त हो जाती है। प्रकृति जो है वो उसकी आयु को समाप्त क्षीण कर देती है। वास्तव में समय भी कम होता जाता है। पहले जमाने में हम देखते थे कि एक दिन में भी बहुत बड़ा समय होता था, जिसके लिए हमारे पास ज्यादा समय होता था, तो जीव जो है वो ज्यादा कार्य करता था, उनके पास करने के लिए बहुत टाइम होता था। लेकिन आज सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, पता ही नहीं चलता। एक दिन शुरू हुआ, समझो डेट स्टार्ट होती है ना, उस टाइम पर हम काटी लगा देते हैं कि ये दिन खत्म हो गया, पूरा दिन में हमें ये करना है वो नहीं आता, बस ये समाप्त हो गया आज का दिन। तो उसी तरह से जिस दिन समाप्त होते उसी तरह हफ्ते समाप्त होते, हफ्ते के बाद महीने, और इस तरह साल, और फिर इस तरह आयु खत्म हो जाती है। जीव अपने जीवन लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो कलयुग के प्रभाव में आ रहा है। और आगे बता रहे हैं दुर्भाग्यांश, कि इतना भाग्यमंद है उनका, कलयुग के प्राणियों का इतने अभाग्य हैं कि उनको साधु संग नहीं मिल रहा। प्योर डिवोटीज का संग जो है वो इन समस्त अवगुण जितने भी हैं उनको खत्म करेगा, क्योंकि प्योर डिवोटीज का संग मिलेगा अगर शुद्ध भक्तों का तो श्रद्धा उत्पन्न होगी, उनका संग मिलेगा तो सत्वगुण में जीव आएगा, उनका संग मिलेगा शुद्ध भक्तों का तो बुद्धि भी सुबुद्धि हो जाएगी, सुमेधा, यहाँ दुर्मेधा लिखा हुआ है ना, सुमेधा हो जाएगा। कैसे, क्योंकि भगवान ने कहा यदि मेरा भजन करोगे तो बुद्धि को ठीक करूंगा, तो अगर भक्तों का संग मिलेगा तो बुद्धि भी ठीक हो जाएगी, और ये सब ठीक हो जाएंगे तो आयु भी सही हो जाएगी। लेकिन इतना दुर्भाग्य है कलयुग का प्राणी कि उनको शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर श्री वेद व्यास जी ने कलयुग के प्राणियों के 5 दोष बताए। पहले तो क्या बताया कि भौतिक शक्तियां जो है वो विरास हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर उनके अंदर श्रद्धा खत्म हो जाती है। तीसरे नंबर पर सत्वगुण का अभाव होता है। चौथे नंबर पर उनकी बुद्धि खत्म हो जाती है, आयु समाप्त हो जाती है और बहुत ही दुर्भाग्यवीन होते हैं। और इसके कारण क्या हुआ, जनान वीक्ष मुनि दिव्य चक्षुषा, क्योंकि मुनि के पास दिव्य चक्षु है और इन्हीं दिव्य चक्षुओं के कारण इन जो जन है यानी जो कलयुग के प्राणी हैं उनके ये सब अवगुणों को वो देख सके। फिर उन्होंने क्या किया, दद्यो, दद्यो का मतलब है विचार किया। किस पे विचार किया, सर्व वर्णाश्रमाणम यत, कि जितने भी वर्ण और आश्रम के जितने भी प्राणी हैं, क्योंकि वो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हितम, उनके हित के लिए विचार किया। अमोघद्रिक, ज्ञान से अपना उनके अंदर जो ज्ञान था उनसे इन समस्त वर्ण आश्रम के जितने भी प्राणी हैं उनके हित के लिए उन्होंने विचार किया। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस प्रकार ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देखता है और जो ज्योतिर्विद होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य और चंद्रमा के जो ग्रहणों को देखकर भविष्यवाणी बता सकते हैं, उसी प्रकार शास्त्रों के अंदर जानने वाला जो मुनि होते हैं वो भविष्य को पहले से ही बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक, उनकी जो दृष्टि होती है वो दिव्य दृष्टि होती है, पैनी दृष्टि होती है, जिसके कारण वो देख सकते हैं और बता सकते हैं। तो खाली बताना उनका कार्य नहीं होता है, क्योंकि ये जो भगवान के भक्त होते हैं उनका कार्य क्या होता है, जन सामान्य का कल्याण करना। वो सदैव इन समस्त जो दुखी प्राणी होते हैं, जो जीवन मरण के चक्कर में सदैव बद्ध जीव होते हैं, उनकी उनको इस दुखों से उनको मोक्ष दिलाने के लिए वो सदैव उत्सुक रहते हैं। वास्तव में ये सबसे बड़ा परोपकार है कि जीव को इस भावबंधन से छुड़ाया जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तविक मित्र तो वही होते हैं। कभी कभी हमसे लोग पूछते हैं कि भाई आप जन सामान्य के कल्याण के लिए क्या कर रहे हो, आप लोग तो खाली बस हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ते रहते हो, भागवत कथा करते रहते हो, लोग इतने दुखी हैं उनको कभी आप है ना उनकी तो सेवा ही नहीं करते हो, उनको ना कभी कुछ प्रोवाइड करते हो ना कुछ देते हो, है ना, क्या कर रहे हो। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि हम यहाँ पर बैठ के जो कर रहे हैं उसी से सबका भला होने वाला है। अब वो आके ले नहीं रहे तो उनका इसमें हमारा क्या दोष है, हमने ये तो यहाँ पर बोर्ड नहीं लिखा हुआ कि दुखी यहाँ पर नहीं आ सकते या फिर जिन लोगों को प्रॉब्लम है। वो जो हमारे पास आएंगे, एक दुखी होगा, एक मरीज होगा, एक है ना जो भी बीमार व्यक्ति होगा डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसको दवा देगा ना। अब यहाँ पर जो जितने भी मुनि हैं बैठकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और सॉल्यूशन ही तो मांग रहे हैं कि कलयुग के दुखों का क्या सॉल्यूशन है, और ये जो मुनि वेद व्यास से चिंतन कर रहे हैं वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि मनुष्य इतना दुर्भाग्यशाली हो गया है, उसकी आयु समाप्त हो गई है, उसकी बुद्धि समाप्त हो गई है, उसका सत्वगुण नष्ट हो गया है, दुर्भाग्य के कारण वो बारंबार दुखी हो रहा है, तो किस प्रकार से उसका दुख समाप्त हो। अब उन्होंने तो यह सॉल्यूशन निकाला है ना श्रीमद् भागवत, अब वो कोई अब इस सॉल्यूशन को अपने जीवन में नहीं उतार रहा है तो उसका दुर्भाग्य है। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते वास्तविक मित्र तो वही होते हैं। यहाँ के आज के जो नेता होते हैं श्रील प्रभुपाद जी बोलते उनको पता भी नहीं होता है कि 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है, लेकिन ये कौन सी यहाँ पर जो जिन ऋषि की बात कर रहे हैं वो क्या है, परावरज्ञ, उनको भूत का भी पता होता है, भविष्य का भी पता होता है, वर्तमान का भी पता होता है। तो इसके लिए वो जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वही वास्तविक सॉल्यूशन है जीव के समस्त दुखों को समाप्त करने का। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये कलयुग के प्रभाव के कारण जीव जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करता, जिसके कारण आध्यात्मिक ज्ञान में कोई श्रद्धा भी नहीं होती है और फिर वो अलग बहुत बहुत किस्म के रोगों में हमेशा लगा रहता है, बेचैन रहता है, रोग होते हैं उसको, बहुत सारी ऐसी बीमारियां, जैसे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं यक्ष्मा यानी वो टीबी का रोग, पहले जमाने में ऐसा होता था कि टीबी का ना कोई रोग होता था और ना ही कोई हॉस्पिटल होता था, लेकिन आज ऐसे ऐसे रोग होते जा रहे हैं क्योंकि समय इतना खराब हो गया, वातावरण इतना दूषित हो रहा है कि केवल अपराध हो रहे हैं और इसके कारण विभिन्न प्रकार के रोग भी जीव को हो रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाल जी ने अंत में बोला है कि इस युग के अभागे लोग क्यों हैं अभागे, क्योंकि उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो श्रील वेद व्यास जी के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है। वास्तव में जो वास्तविक ज्ञान दे रहे हैं, जो वेद व्यास जी के आदेशों को एज इट इज बता रहे हैं, उनका स्वागत करते हुए कतराते हैं। वो अपनी ओर से कोई ना कोई योजना बनाते रहते हैं कि हम किस तरह से वर्ण आश्रम, जितने भी वर्ण आश्रम के लोग हैं उनका कल्याण करें, लेकिन जो वास्तविक परोपकारी योगी हैं, जैसे व्यास, नारद, मधु, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो एज इट इज जो शास्त्र का अध्ययन कराते हैं और करते हैं, आज के लोग उनको ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। परंतु श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वे भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन जो एज इट इज शास्त्र को आप तक पहुंचा रहे हैं, जो वास्तव में वेद व्यास जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो एक ही है, क्योंकि उनका उद्देश्य एक ही होता है। उनका उद्देश्य ना अपनी पब्लिसिटी करना होता है, ना अपने ज्ञान का बखान करना होता है, ना ही संसार में अपना मान मर्यादा प्राप्त करना होता है, बल्कि उनका एक ही उद्देश्य होता है, पतित आत्माओं को भगवत धाम भेजकर उनका उद्धार करना। लेकिन क्योंकि कलयुग के अभागे लोग उनके आदेशों का पालन नहीं करते हैं, इसके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के दुखों को भोगना पड़ रहा है। तो आज वेद व्यास जी सूत गोस्वामी कलयुग के इन समस्त दोषों के विषय में बता रहे हैं, जिनके द्वारा वेद व्यास जी को ये प्रेरणा मिली कि आखिर कलयुग के लोग जब इतने अभागे हैं, इतने उनके अंदर अवगुण हैं, कलयुग के इतने सारे दोष हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा। तो ये प्रेरणा उनको मिल रही है और आगे भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम महापुराण को रचने का, संकलन करने का निश्चय किया। आप सब साथ रहिएगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं आप सबकी सेवा अच्छी तरह से कर सकूं। हरे कृष्ण।